संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। इन निष्कर्ष की गाथा है और अपन ने इसे परसों पढ़ा था, है ना, जिसमें ये कहा गया है कि जीव मरे चाहे न मरे, तुम जीवों को मारो चाहे न मारो, उससे कर्म बंध का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कर्म बंध तो अद्वसान भावों से होता है। अज पढ़ो, हाँ शांति जी पढ़ो।
शान से यह बंद का संक्षेप तुम जान लो परमार्थ से।
मूल गाथा में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है मारेऊ माँ बा मारेऊ, मारे और चाहे मत मारे, माँ जो है मत, माँ माने मत, ना माने ना, मत मारे। इसलिए मैंने पहले अर्थ किया था जी मरे चाहे न मरे, क्योंकि मार तो सकता ही नहीं है, लेकिन आचार्य का शब्द मारो ही है, इसलिए पद्यानुवाद में भी मारो ही लिखा और कलश उसके गद्य में भी मारो ही लिखा। सीधा सच्चा अर्थ है कि मारने का भाव तो होता है तो उसको ही मारना कहते हैं, वो जीव के मरने से ही मतलब है, क्योंकि मारने के भाव से तो बंद होता ही है ना, कि मारो न मारो जीव को, माने तुम्हारे निमित्त से जीव मरे चाहे न मरे, है ना, सुखी हो चाहे दुखी ना हो, ये अपनी तरफ से लगा लो, लेकिन यदि अद्यवसान भाव हैं तो गारंटी से बंद होगा, और अद्यवसान भाव नहीं है तो गारंटी से बंद नहीं होगा। अब जीवों को मारने और बचाने की प्रक्रिया चलती रहती है हमारे दिमाग में, भाव चलते रहते हैं और कर्म का बंद होता रहता है, तो कभी ऐसे वियोग का अवसर नहीं आता कि जिससे हमारा ये भ्रम भंग हो। क्या दिक्कत क्या है, समझे ना, वो दोनों एक साथ चलते रहते हैं, तो हम समझते इससे ही हुआ, इससे ही हुआ। सागर के ईस्ट में 15 किलोमीटर दूर एक छोटा गांव है, वहां एक अध्यापक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक है, और एक वेस्ट में भी 15 किलोमीटर दूर गांव है, उसमें भी वैसे ही स्कूल है, उसमें भी वैसे ही मास्टर है, उन दोनों की शक्ल भी बहुत कुछ मिलती जुलती है, दोनों की परिस्थितियां एक सी हैं, संडे को दोनों की छुट्टी होती है, दोनों को मुख्य स्थान से आवश्यक पेन कॉपी किताबें खरीदवानी पड़ती हैं, वे एक टाइम बसें आती हैं, तो दोनों अपनी एक पूरब से एक पश्चिम से आता है और बस स्टैंड पर दोनों एक साथ उतरते हैं और वहां से रिक्शा पकड़ के दोनों एक साथ उस बुक सेलर की दुकान पर पहुंचते हैं। ऐसा साल भर में लगभग सैकड़ों बार होता है। क्या अब उनमें परस्पर कुछ भी संबंध नहीं है, वही चीजें वो खरीदता है, वही चीजें वही खरीदता है, वही सब वैसा साफ वैसी की वैसी परिणति है। देखने वालों को दुकानदार को भ्रम हो जाता है कि ये सगे भाई होंगे नहीं जुड़वा होंगे नहीं तो आगे पीछे के होंगे, बिल्कुल गारंटी से, और इनमें बहुत प्रेम है आपस में, इनमें साथ साथ आते हैं, है ना, जबकि उनका बिल्कुल भी संबंध नहीं है, पहचान तक भी नहीं है, एक दूसरे जानते भी नहीं है कि ये क्या नाम है, इनका क्या गांव है, कुछ नहीं, और ये देख देख करके जगह उनको एक मान लेता है, ہم نے برسوں سے تمہیں دیکھا ہے، تم جھوٹ بولتے ہو. وہ کتنا ہی کہے گا کہ میں نہیں جانتا اس آدمی کو، کیوں؟ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. یہی حالت ہماری ہے، وہاں ہمارا راگ ہوتا، یہاں ہمارا بند ہوتا، یہاں ہمارے جیووں کا مرن ہوتا، جیون ہوتا، یہ سب ایک ساتھ ہوتے رہتے ہیں. تو ہم ایسا بائی فرکیشن نہیں کر پاتے ہیں، ہمیں بھاووں کو بھی مان لیتے ہیں بند کا کارن، اور جو کریائیں ہوئی ہاتھ پیر چلنے کی ان کو بھی ہم بند کا کارن مان لیتے ہیں. اب ایسا کوئی ادھارن ملے کہ جب ان کا بیوگ ہو نا تو پتا چلے کہ یہ نہیں ہے. تو ہے ایسا کوئی ادھارن آپ کے خیال میں کہ راگ دیش بالکل نہیں ہوتا ہو اور انت جیووں کا ہاتھ ہوتا ہو ان کے نمت سے؟ ہے، شاستر میں ہے. انا جی سے پوچھ لو، جب یہ اودارک شریر پرمودارک ہوتا ہے تو اودارک شریر میں انت انگا نگولیا استابر اور پرش جیو بھی ہوتے ہیں، اور جب پرم اودارک ہوتا ہے انت بھگوان کا تب وہ بالکل نرجیو ہو جاتا ہے. تو سب سے زیادہ پرشستاب جیووں کی ہنسا بیتراگی بھگوان کے ہوتی ہے. براگ تو دسویں گن سمے کے انت میں ختم ہو گیا، اور وہاں ہوتا ہے، بولیے دیکھیے، جیووں کی ہنسا سب سے زیادہ اور بند بالکل نہیں ہے. کیوں؟ براگ بالکل نہیں ہے. تو اس سے معلوم پڑتا ہے جیووں کے مرنے دھرنے سے بند کا کوئی سمبندھ نہیں ہے. سمجھ میں کیسا آپ کیولی بھگوان کو تم بیچ میں لے آتے ہو؟ کہ کس نے بتایا؟ کہ کیولی بھگوان نے بتایا، ہم نے تو دیکھا نہیں. آج تو نہیں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے، مان لو گے کہ نہیں مان لو گے؟ کیوں مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ یدی نہیں مانو گے تو بات ختم ہے. پھر سب نے کوئی جینی مت کہو، آرہنت مت کہو، جن بھگوان کا بھگت مت کہو. کیوں؟ جینی ہونے کا جو لابھ اٹھاتے ہو نا وہ مت اٹھاؤ. میں جینی ہوں، میں پنڈت ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. جین سماج کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ ڈیوٹی ہے. کیا ڈیوٹی ہے جین سماج کی؟ تیرے کھلانا پلانا، تیرے کپڑے لتے کی ویوستھا کرنا، تیرے پاؤں دھونا ہے، یہ سماج کی ڈیوٹی ہے. کیا کی ڈیوٹی ہے؟ میں جینی ہوں نا. ارے جینی ہے تو اپنے گھر کے لیے ہے نا، سیوا کروانا ہے تو اللہ ہمیں سمجھ کر سمجھنا ہو. اصلی سیوا تو یہ ہے نا، تو چھوڑ دو پھر کل سے. انہیں تو یہ ماننا پڑے گا کیا کہ وہ ارہند بھگوان کے اتنا جیووں کا گھات ہو. اچھا مان لیتے ہیں بیٹا، مان لیا تو پکڑے گئے. پھر آپ تو کرمت بھی ماننی پڑے گی کہ ان کے گیان میں سارا جھلکا ہے. جس کیول گیان کو ایک دفعہ سویکار کیا تو سروتر سویکار کرنا پڑے گا، دوسری جگہ انکار کیسے کر سکتے ہو؟ پھر لیکن 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 لگاتے ہیں. مانو اس کی کتنی تیبر اچھا ہے. کیا تیبر اچھا ہے؟ کہ تھوڑا تو پر کو حصہ دو. پہلے تو ایک کہتا ہے پچاس پچاس پرسینٹ میں پر آدمی کا حصہ ملنا چاہیے. پھر کہتا ہے کہ نہیں، چلو 49% گھٹتے 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 وہ سما پھر چھوٹا ہوتا جاتا ہے نا. ایک پرسینٹ بھی نہیں. یہ سننے کو ترستا ترستا گیا تو ابھی تم پاٹھ کر رہے تھے وہ انتم کلش پڑھو، پر سنگ ایو انتم کلش جو پاٹھ کر رہے تھے اس میں آیا تھا پر سنگ ایو. سنسکرت میں بھی ہے اور ہندی میں بھی ہے. کلش 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 وہاں سوریہ کانت آگے نہیں کیا روپ نہ ہو یہ سوری کانت من سور بن
آتم پر سنگ بن.
اتنا ملم لگ جاتا ہے اتنا دنوں میں ایک شبد ملا ہے مشکل سے. ابھی پرسنگ کے بنا ایسے سوری کانت منی سورج کی کرن کے بنا گرم نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی یہ آتما بھی پرسنگ کے بنا گرم نہیں ہوتا، راگ دیش سے تپت نہیں ہوتا. پرسنگ اے و لکھا نا سنسکرت میں بھی پڑھو، پرسنگ اے و لکھا. اب اپن وہاں تک پہنچتے کہ نہیں پہنچتے، इसलिए मैंने आज ही आपको बात बता दी। कौन सी? ये सुनना है सिर्फ। क्यों बिना यही सुनना है ना? थोड़ा बेहतर है, थोड़ा बेहतर रखो। परसंग एव है, लेकिन परसंग का क्या अर्थ है ये नहीं तुम समझते हो। गुरुदेव बहुत अच्छा अच्छा अर्थ करते हैं इसका, कि पर ने कराया ये कहां हुआ? तूने पर का संग किया इसलिए एक गड़बड़ हुई। मिल गया? कौन सा? 74 पेज पर। देखो देखो 74
पेज पर। जातुरागा निमित्त भावम आत्मात्मनो याति यथार्क कांत तस्मिन् निमित्तं परसंगैव वस्तु स्वभावो यमुदेति तावत्।
देखो जिस प्रकार सूर्यकांत मणि सुता से ही अग्नि रूप प्रणमित नहीं होता, उसके अग्नि रूप प्रणमन में सूर्य का बिंब निमित्त है, अब है ना? उसी प्रकार आत्मा सुता ही रागादि रूप नहीं प्रणमता, उसके रागादि प्रणमन में निमित्त प्रसंग ही है। वस्तु का ऐसा स्वभाव सदा ही प्रकाशमान है। ख्याल में है ना? अब देखो इसमें कलश टीकाकार क्या लिखते हैं, आगे पढ़ोगे सबको एक एक का तो मालूम पड़ेगा, अब उसका प्रयोजन नहीं हो जाएगा, दिक्कत यह है। लेकिन तुम्हारे सागर में तो नंबर इसका आने ही वाला नहीं है। दोबारा कलश टीका में उक्त कथन में कार्य की उत्पत्ति में उपादान कारण और निमित्त कारण की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। बनासी दास का फिर एक छंद है, पूरा घर पे पढ़ लेना। बनासी दास ने दो कितने छंद लिखे थे इसमें, कई उन्होंने उदाहरणों की माला खड़ी कर दी है। वो ये बताते हैं कि भाई ये प्रसंग तूने किया है ना, इसमें उसका क्या है? क्या माने तू इसमें पर का दोष देखता है? पढ़ो 78 पेज पे, मैं गुरुदेव श्री का बताता हूं। ठीक इसी प्रकार आत्मा स्वयं अपने आप कभी विकारी नहीं होता, विकार का निमित्त भी नहीं बनता। आत्मा को त्रिकाल चिद स्वरूप एक शुद्ध ही है, वह स्वयं अकेला विकार रूप कैसे हो, क्यों हो? आत्मा की वर्तमान पर्याय में जो विकार पुण्य पाप के भाव, दयादान भक्ति आदि के स्वभाव, अहिंसा झूठ चोरी आदि के पाप भाव अशुभ भाव होते हैं, उनका निमित्त भगवान आत्मा स्वयं नहीं है, उसमें तो प्रसंग ही निमित्त है। जब आत्मा कर्मों का संग करता है, कर्म कुछ करते हैं इस तरह से बिल्कुल बात नहीं है, तो पर्याय में विकार होता है। विकार होने में भगवान आत्मा निमित्त नहीं है, पर प्रसंग अर्थात जड़ कर्मों का उदय निमित्त होता है। देखो प्रसंग का अर्थ ऐसा कदापि नहीं है कि कर्म विकार करता है कराता है। हाँ अपने तत्समय की योग्यता से आत्मा में जब जैसा विकार होता है तब तदनुकूल प्रसंग निमित्त रूप होता अवश्य है। प्रसंग एव ऐसा जो कहा उसका अर्थ यह नहीं है कि पर वस्तु जबरन राग कराती है। वस्तुतः बात यह है कि जब जीव स्वयं अपनी उपादानगत तत्समय की योग्यता से प्रसंग करता है तब विकार होता है और स्वभाव के आश्रय से विकार नहीं होता। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि रागादि रूप प्रणमन आत्मा का स्वभाव नहीं है, बस स्वभाव भाव नहीं है, परंतु प्रसंग से उपजा विभाव है, विभाव भाव है। यद्यपि यह बात भी सत्य है कि पर ने कुछ नहीं कराया है, तथापि यह भी सत्य ही है। इस प्रकार विकार का मूल हेतु प्रसंग है, स्वयं कृत प्रसंग ही है। माने इसे तुम उस पर इतना आयात इसको क्योंकि अंदर से वो बहुत महत्व पड़ा है ना, کہ کچھ تو ہونا چاہیے کچھ تو ہونا چاہیے, میں آگے پیچھے تک دیکھوں. اب تم آگے پیچھے تک دیکھنے کی تکلیف نہیں کرنا پڑے, میں نے آگے پیچھے تک بتا دیا کہاں تک پہنچے گی بات. دیکھو آتم کھاتی وہ ٹیکہ کار بہت مارمک ٹیکا ہے, اپنے کرموں کی وچترتا کے بس سے پرجیووں کے پرانوں کا وپروپن اچھید ویوگ کداچت ہو کداچت نہ بھی ہو. دیکھو کیا کیا لکھا, کیسے اپنے کرموں کی وچترتا کے بس. آپ نے تو 50 جیووں کو مارنے کا بھاو کیا, اروا جس ویکتی کو لکش کر کے گولی چلائی, گولی تو سو صوبے دار پہ چلائی تھی اور لگ گئی لہنا سنگھ کو, یاد ہے کیوں تو کیسے لگی کہ وہ اس نے آگے آ گیا کہ کچھ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس لہنا سنگھ کے مرن کا کال آ گیا تھا اور صوبے دار کا مرن کا کال نہیں آیا تھا. اب لیکن اپنے کرموں کی وچترتا کے بس, وہ ہے تو سوبھاؤ کے کارن وچترتا, لیکن وہ وچترتا کرمودے کے انروپ ہے, کرمودے اس کے انروپ ہیں, اس لیے اس سے اس کے دوارا پربھاشت کرتے ہیں. کیا لکھا نا, اپنے کرموں کی میں نے کون مارنے والے کی بات نہیں ہے, جو مرے اپنے کرموں کی وچترتا کے بس پرجیووں کے پرانوں کا وپروپن کداچت ہو اور کداچت نہ بھی ہو. کیا نا, میں تو بھی میں مارتا ہوں ایسے اہنکار رس سے بھرا ہوا ہنسا کا ادوسائے. یہ اہنکار رس میں مارتا ہوں میں نے مارا ہی نشچے سے اس کے بندھ کا کارن ہے, کیونکہ نشچے سے پر کے پرانوں کا وپروپن روپ پربھاو کسی انیہ کے دوارا کیا جانا سکے نہیں ہے. یعنی وہ مارا تو کسی دوسرے نے, مطلب نمت بھی کوئی دوسرا ہی ہے, گولی بھی کسی دوسرے کی لگی ہے سننا, لیکن اے میں نے مارا ایسا بھی کوئی کہتا ہوگا کیوں جینیوں میں, روزانہ اخباروں میں نہیں پڑھتے ہو کہ وہ اپنے آپ مر گیا, ڈاکو نے ڈاکو کو مار دیا اور پولیس اس پہ جو 50 لاکھ کا پرسکار تھا وہ لینے کے لیے ہم نے مارا ہم نے پکڑا, اور کتنے لوگ آ جاتے ہیں کہ ہم نے پکڑا ہم نے مارا, کیوں آ جاتے کہ نہیں آ جاتے, پھر کیسا تھا کن نے مارا کن نے مارا, چلو سب نام لکھا دو, دیکھیں گے پرسکار سب میں بانٹ دیں گے کہ الگ الگ دے دیں گے, گورنمنٹ کو تو کیا ہے. تو 50 لوگوں نے لکھا دیا کہ ہم نے مارا. پھر کہا کہ یہ اس کو پکڑوانے کے لیے پرسکار تھا, زندہ پکڑوانے کے لیے پرسکار تھا, کیوں مارنے کے لیے پرسکار نہیں تھا. اس لیے اب پرسکار تو تمہیں ملے گا لیکن مارنے کے اپرادھ میں پھانسی کی سزا بھی ہوگی. کتنے لوگ ہیں کہ میں نے نہیں مارا کا ڈیسیجن کیا ہے. ایک بہت بڑھیا کہانی تھی کہ سیٹھ جی شام کے 9:30 کی گاڑی سے بمبئی جا رہے تھے, اور چوکی دار نے پیر پکڑ لیے کہ سیٹھ جی میں آج آپ کو بمبئی کسی حالت میں نہیں جانے دوں گا اس گاڑی سے, کیونکہ پاگل ہو گیا ہے, مجھے بہت ضروری کام ہے, میرا ریزرویشن ہے, آج کل ریزرویشن کتنا کٹھن ہے, میں تو جاؤں گا کہ میں مر جاؤں لیکن آپ کو جانے نہیں دوں گا, سر پکڑ لیے اور جھپٹا جھپٹی میں کتنا ٹائم خراب ہو گیا کہ گاڑی کیا. تو اس سے پوچھا کہ تم کیوں ایسی جد پہ آیا, تجھے کیا لینا دینا ہے, کہ صاحب میں نے ابھی سپنا دیکھا کہ یہ گاڑی جو ہے آپ جو جانے والے ہو یہ اگلے ہی اسٹیشن کے پہلے جو ندی آئے گی وہاں جا کر کے پل ٹوٹ جائے گا اور گاڑی ندی میں گر جائے گی اور ایک یاتری بھی اس میں سے بچے گا نہیں, میں نے ایسا سپنا دیکھا. اسی لیے میں نے آپ کو نہیں جانے دیا کہ تم نے میری جان بچائی. 500 روپے کا انعام دو اسے. 500 روپے کا انعام شیر جی نے دلایا اور نکال کے آرڈر دے دیا کہ اسے نوکری سے نکال دیا جائے. کیا کیا دے دیا؟ کیوں اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں شیر جی نے ٹھیک کیا کہ غلط؟ 500 بتایا اس کے لیے تو 500 کا انعام دیا لیکن نکالا کیوں؟ کہ 9:30 گاڑی جا رہی تھی, 9 شیر جی جا رہی تھی اور اس نے اس کے پہلے ہی ابھی ابھی سپنا دیکھ لیا تو یہ سارا 8 ہی سو گئے. وہ کئی بھی چوکی داری کرے گا 12, 1, 2 تو کیا ہوگا؟ چوکی دار کی ڈیوٹی سونے کی ہے کہ جگنے کی؟ یعنی وہ اپنی ڈیوٹی کا بالکل پکا نہیں ہے. اچھا چوکی دار رکھو, سمجھ نہیں نا. یعنی یہ جو ایک کھڑ میں تو بدلتا ہے, میں نے مارا کہ میں نے نہیں مارا, کہ میں نے بچایا کہ میں نے نہیں بچایا. کیوں بتانے والے میں نے اسے لکھ سکتے ہو, اسے کس نے بتایا, کس نے بتایا؟ سب کہتے میں نے بتایا, میں نے بتایا, کیونکہ انعام ملے گا. تب کہتے ہیں بھیا اس کو تو مارنے کے لیے 1 کروڑ کا انعام تھا, تو نے بتایا کیسے اسے؟ پھر بھیا پھر کھڑی رہن دے. بولا تو تجھے آتنک بادی کے سہیوگی ہونے کے اپرادھ میں آجیون کاراواس ملا. کیا کیا چلیے, تو نے آتنک بادی کو بتایا نا, اس کا سہیوگ کیا نا, ہمیں ہاتھ بڑھا سکتا ہے. یہ کہتے بھائی صاحب یہ پردرب میں کچھ کرنا مارنا بتانا سکھی دکھی کرنا یہ متھات نامک مہا اپرادھ ہے, اور مارنے کا بھاو اور بچانے کا بھاو تھوڑا تھوڑا سا پاپ اور پنیہ بننے کا کارن ہے. کیا سمجھنا ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ جو پاپ لگا مارنے کا بھاو کا وہ 0 ہے, سمجھے. میں ایک گنت بتاؤں تھوڑا, ہے طاقت آپ کو سننے کی؟ پاپ کا حساب کتاب بتاؤں تھوڑا, میں بھی بنیا ہوں, ویاپاری ہوں. سمجھ لیجئے کہ ہم نے کسی کو گولی ماری اور وہ مر گیا, سمجھنا. اب اس کی وجہ سے ہمیں 1 کلو پاپ لگا, یدپی پاپ کلو کے حساب سے نہیں لگتا, لیکن اپنے ادھارن کو تو سمجھنا ہے نا کلو کی بھاشا میں. 1 کلو پاپ لگا, اب وہ 3 حصوں میں بانٹنا ہے. ایک تو یہ کہ میں نے میری گولی سے وہ مرا, اس کے کان کتنا گرام پاپ لگا. دوسرا یہ کہ میں نے اسے مارنے کا بھاو کیا, اس کے کان کتنا پاپ لگا. اور میں اسے مار سکتا ہوں, مار سکتا ہوں, جب چاہوں مار دوں, میری کرپا پہ زندہ ہے, ایسی مانتا کے کان 1 کلو پاپ میں کتنے گرام پاپ لگا. یہ بٹوارا کرنا, آپ اپنے اپنے من میں کر لو بٹوارا. جن نے میرا پروچن پہلے کبھی اس سمبند میں نہیں سنا ہو بے کیا بے ذرا دھیان ہی رکھیں. کیا کہ بٹوارا کرنا ہے کہ 3 پاپ ہم سے ہوئے, وہ تینوں میں کس کے کان کتنا پاپ لگا. 1000 گرام میں, میں نے 1000 گرام 1 کلو ہو گیا نا. اب میں بتاتا ہوں اور اس گنت کے حساب سے اپنے اتر کو ملانا. یعنی آج کی گورنمنٹ سے پوچھو تو وہ کہے گی کہ وہ مرا اس کا پورا 1 کلو پاپ لگا. یہ گورنمنٹ یہ کہے گی. کیا پرمان ہے میرے پاس؟ گھبراؤ نہیں, میں کوئی وکیل نہیں ہوں, پھر بھی میں آپ کو بتاؤں گا. وکیل بنتے بنتے بچا ہوں مشکل سے, وہ کبھی سناؤں گا کیسے بچا. کیا ابھی سنا دوں؟ میرے سے بہت لوگ کہتے تھے کہ آپ کی ترک شکتی بہت اچھی ہے, یعنی آپ وکیل ہوتے تو ٹاپ کے ہوتے, وہ جیٹھ ملانی بھی آپ کے سامنے پانی بھرتا. کیا تو میرے من میں بھی بہت پانی آتا تھا لیکن نہیں تھا وکیل کیا کرنے. تو جب میں گریجویٹ بی اے ہوا چار بچہ پیدا ہونے کے بعد, میں تو پہلے کا شاستری تھا, پھر شادی ہو گئی, پھر چار بچے ہو گئے, پھر میں نے میٹرک کیا, پھر انٹر کیا, پھر بی اے کیا, پھر ایم اے کیا, پھر پی ایچ ڈی کیا, پھر ڈی لیٹ. بعد کا کام ہے. تو جب میں بی اے ہوا تو میں نے کہا اب اپن ایل ایل بی کریں گے, وکیل بنیں گے. کیوں منصوبہ مفت میں کیوں جانے دیں؟ تو اشوک نگر میں رہتا تھا یہیں پاس میں, وہاں تو ایل ایل بی کی کلاسیں چلتی نہیں تھیں, گناہ میں ایل ایل بی کی کلاسیں چلتی تھیں. پر وہاں سے ایک گھنٹے کا راستہ تھا ریل سے, تو میں نے فارم وارم بھر کے اور ایل ایل بی میں پرویش کرنے کے لیے میں ٹرین میں بیٹھ کے گناہ کو روانہ ہوا. راستے میں مونچھ والے دو تین ٹھاکر بیٹھے تھے اور آپس میں چلا چلا کے باتیں کر رہے تھے کہ میرا یدی میں نے اسے جان سے نہیں مارا تو میرا نام پھلانے سنگھ نہیں. اور دوسرا کہتا چپ رہے, یدی تو نے اسے مارا تو ساری زندگی جیل میں سڑے گا, پھانسی پہ چڑھے گا, چکی پیستے پیستے زندگی نکلے گی. کہ میں ایسا بے وقوف نہیں ہوں, ماروں گا تو میں اسے اوشیہ. جب میں کسی کو مارتا ہوں کوئی پہلا تھوڑی ماروں گا, پہلے جا کر میں وکیل کروں گا. بہت نامی وکیل تھا وہاں پر کہے گا فوجداری کا, تو ہر بک آدمی کو بچا لیتا تھا. میرا دوست ہی تھا, نام نہیں بتاؤں گا, جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا. کیا کہ میں پہلے اسے وکیل کرتا ہوں اور پھر ہتیا کرتا ہوں, کیونکہ سامنے والا اس وکیل کو نہ کر لے نہیں دبے میں بچوں گا بھی نہیں. کیا ہتیا کرنے کے پہلے وکیل کرتا ہوں, سمجھ گئے؟ تو وہ یہ سنا تو میرے آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا, پیروں کے نیچے زمین کھسکنے لگ گئی. میں نے کہا بھیا تو سمجھتا تھا کہ یہ وکیل مانے سب بیچاروں کو جو ہیں ان سے بچانے والا اور دیا کا بھنڈار اور پھانسی پیسے چڑھتے ہوئے کہ بچا لینے والا, جیل سے بچا لینے والا, یہ دیا کا اوتار بھگوان تھا بننا ہے. لیکن یہ تو ہتھیاروں کو ابھیدان دینا ہے. کیا سمجھنا ہے کہ نہیں؟ ان کا بہت بڑھیا تین منزل کا مکان تھا وکیل صاحب کا, لیکن گاؤں کے باہر ایک تین میں اوپر تین چھپر لگا تھا نا, اس میں بیٹھتے تھے. میرے پرتن میں بھی آتے تھے, میں کہا وکیل صاحب اتنا بڑھیا مکان ہے, خالی پڑا ہے, تو تم یہاں کیوں نہیں بیٹھتے ہو بیچ بازار میں؟ وہاں جا کے اتنی گرمی میں وہاں کیوں بیٹھتے ہو؟ بولے آپ سمجھتے ہیں مجھے بے وقوف سمجھتے ہیں؟ میں کہا نہیں, بے وقوف سمجھتے ہوتے تو پوچھتے ہی کیوں. بولے میں چور ڈاکوؤں کو اپنا گھر نہیں دکھانا چاہتا ہوں. سمجھے کیا؟ میں چور ڈاکوؤں کو اپنا گھر نہیں دکھانا چاہتا ہوں. سمجھ لو کیسے لوگوں کی سنگتی میں زندگی بتانے کا نام وکالت ہے, جھوڑانا نہیں. میں نے کہا یہ تو ابھیدان ہو گیا ان کو, میں نہیں کروں گا وکالت. تو میں پہلی گاڑی سے اترا, گناہ نہیں پہنچا, اس کے پہلے سڑور آتا کہ آتا ہے, وہاں سے ہی بدلا. دوسری گاڑی وہاں سے آ رہی تھی, اس میں بیٹھ کے گھر واپس آ گیا. ایسے وکیل بنتے بنتے بچ گیا. کیوں, اچھا ہوا کہ برا؟ کیوں, کیا ہوتا وکیل بن گیا ہوتا تو کالا کوٹ پہنے می لوڈ کرتا پھرتا وہاں کھڑا رہتا؟ یہ گدی کہاں ملتی؟ ہزاروں لوگ ایسے سوتا کہاں ملتے؟ بولو, اپنی بات چل رہی تھی بھائی, ایک کلو تاپ کا حساب کرنا ہے. یہ تو بیچ میں آ گئی نا بات, ایک کلو پاپ کا حساب کرنا ہے. اب میں بتاتا ہوں, آپ نے اپنے دماغ میں ڈیسیزن کیا ہوگا. گورنمنٹ تو کہتی ہے کیونکہ وہ جس آدمی کے مارنے کے بارے میں کیس چلا, یدی وہ زندہ نکلے آئے تو گارنٹی سے وہ بچ جاتا ہے. کہ جس کے مارنے کے بارے میں اس کو کیس چل رہا ہے وہ آدمی زندہ ہے, ایک کھڑا ہے. اب کیا کا کیس, ایک سیکنڈ میں وہ بری ہو جاتا ہے کیا, اور سامنے والے پہ الٹا کیا کا کیس چلتا, جھوٹا مانا اپمان کا بھی کیس چلتا. اس کا مطلب ہے تو مارنے کے بھاپ کا کوئی مانتے ہی نہیں. मानने की मान्यता का मानते ही नहीं, वो तो क्रिया का माने ना, हो गया ना। आज की गवर्नमेंट क्या मानती है वो तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं बता रहा हूं। ये समझो गवर्नमेंट के बिल्कुल 100% विरुद्ध है क्या, 100% विरुद्ध तो है, तो मैं आप मुझे गवर्नमेंट का विरोधी तो कह सकते हैं लेकिन अन्ना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैं उसके विरुद्ध आंदोलन नहीं करता। क्या बात चल रही थी? हाँ, एक जैन दर्शन कहता है कि वो जीव मरा तो उसका एक ग्राम भी पाप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं मरता तो भी 1 किलो पाप लगने वाला था। बोलो सही है कि नहीं है? तो वो पकड़ से गोली निकल जाती, उसका आयुक्रम बाकी होता तो वो बच जाता, लेकिन इसने तो गोली चला दी ना, तो जैन धर्म के हिसाब से तो कर्म बंद उसी वक्त हो गया है। तो अब वो जिंदा है कि नहीं है इसको देखेगा जैन धर्म? बोलो। इससे सिद्ध होता है कि उसके मरने और नहीं मरने से 1 किलो में 1 ग्राम भी पुण्य पाप नहीं लगता। उसे पुण्य पाप तो लगता है लेकिन इस कारण नहीं लगता, सुनिए ना। अब वो जो मारने का भाव हुआ उससे कितना पाप लगा, और मैं मार सकता हूं कि मान्यता से कितना पाप लगा, अब इसका बंटवारा रह गया ना बाकी। अब वो हो गया चारित्र मोह संबंधी दोष और यह श्रद्धा संबंधी दोष, ठीक है। तो उस मारने के भाव संबंधी वजह से 1 ग्राम पाप लगा, और मैं मार सकता हूं इस मान्यता के कारण 999 ग्राम पाप लगा। बोलो स्वीकार है? हाथ नहीं उठवाऊंगा क्योंकि मेरी जमानत जब्त हो जाएगी। समझ में आया क्या? ये जैन धर्म कहता है वो 1 ग्राम के पे तो बहुत अन्याय है, कि 999 एक ग्राम में तो बहुत फर्क है। इतना रखो कि 100 ग्राम और 900 ग्राम। क्यों? वैसे तो आप हमारी मानो तो 500-500 ग्राम रखो, अब तुम अपनी जिद पे ही उड़े हो और तुम्हारा स्टेज तुम्हारे हाथ में है अभी, तो हम इतने पे तैयार हैं। कितने पे? 100 ग्राम और 900 ग्राम में कि नहीं? अरे हम तो 1 ग्राम भी बहुत ज्यादा कहा है। शास्त्र में तो लिखा है कि उसे अनंत गुणा पाप और इसे अनंतमा भाग पाप, जो शास्त्र में ये लिखा है। बोले क्या कहना है? पढ़े हैं शास्त्र? इंदिरा जाओ हमारे यहां तो पढ़ो थोड़ा है? है? क्या समझ में आया भैया? ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं, जानता हूं ये पंडितों की नगरी है सागर, और यहां बोलने का मतलब क्या होता है? अरे सारे देश में जाने वाला है, टीवी पे जाएगा। अरे पहली दफे थोड़ी बोल रहा हूं, अब 100वीं दफे है कि 110वीं जगह है, मुझे इतना याद नहीं है, विंके की चोट कह रहा हूं मैं। शास्त्र कहते हैं उसमें अनंत गुणा और इसका अनंतमा भाग, क्योंकि यदि श्रद्धा ठीक होती और फिर मारने का परिणाम आ गया होता और वो जीव कदाचित मर भी जाता गोली चल के, तो भी उसे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का बंध नहीं होता, मिथ्यात्व का बंध नहीं होता, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी का बंध नहीं होता, नरकायु का बंध नहीं होता, तिरंज गति तिरंज गत्यानुपूर्वी का बंध नहीं होता, तरजायु का बंध नहीं होता, क्या साधारण का बंध नहीं होता, एक इंद्री का बंध नहीं होता, 2 इंद्री का बंध नहीं होता, 3 इंद्री का बंध नहीं होता, 4 इंद्री का बंध नहीं होता। बोलो क्या करना? स्त्री पर्याय का बंध नहीं होता, नपुंसक पर्याय का बंध नहीं होता। यदि गिनाया जाए तुम जैसे तुम्हारे घर में सब रखा हो क्यों? हाँ है, शास्त्र में लिखा है ना, समय सार में नहीं गोमठ सार में लिखा है। कहाँ? कि पहले गुणस्थान से निकलते ही 16 प्रकृतियों का बंधे विच्छित्ति हो जाती है, और वे 16 कौन कौन सी हैं? मिच्छे मिच्छादावम सोहम तियम आता है ना सब गाथा है पूरी। इसमें जो मैंने प्रकृतियां गिनाई ना खतरनाक, ये सब हैं। संबंध इसी मर के स्त्री नहीं होता ना, नपुंसक नहीं होता ना, नरक में नहीं जाता ना, प्रेत में नहीं जाता ना, तो इसका मतलब ये गतियां उससे बंध नहीं होती हैं। अब वो चाहे उसे मारने का भाव कदाचित आ जाए तो आ जाए, सिद्ध हो गया क्या? नहीं। अरे ये 16 नहीं, 16 तो मां बाप है। उसके बाद वो दूसरे गुणस्थान से भी निकल गया, इसलिए दूसरे गुणस्थान में 25 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। तो 16 और 25 41, फिर तीसरा भी पार हो गया, क्योंकि ये गुणस्थान तो लौटते वक्त होते हैं, तो 4 की वहां भी बंध विच्छुत्ति होती है। कितनी हो गई? 45। तो 41 क्यों बोलते हो, 42 क्यों बोलते हो? अरे वहां जाकर आहार एक दुख और तीर्थंकर प्रकृति बंधने लगती है। ये तो हमने जब कांजी स्वामी का नाम नहीं सुना था तब पढ़ लिया था पंडित नंदनलाल जी से, राजाखेड़ा में भी हमें गोमठ सार पढ़ाते थे और हमें इनाम मिली थी उस जमाने में गोमठ सार में। भगत जी आए थे कलकत्ता से, बहुत वहां बड़े माने जाते थे उस वक्त में, उनने हमारी परीक्षा ली थी और हम दोनों भाइयों को कितना कितना इनाम दिया था आप कल्पना नहीं कर सकते, 10-10 रुपये का। हंसते हो? आज के 10,000 और उस दिन के 10 रुपए की बराबर कीमत थी। यही सुनाया था हमने उन्हें क्या? घड़ी देखता था, मैं पारोली में पढ़ाता था, हेडमास्टर था वहां, धर्म भी मैं ही पढ़ाता था, दादा पढ़ाते थे भीलवाड़ा में। वहां एक भ्रमचारी थे ऐसे ही जैसे जी थे, उनका नाम था चांदमल जी, जिन्होंने उदयपुर का आश्रम खोला। तो उन्होंने वो संस्था भी खोली थी जिस मिडिल स्कूल में मैं हेडमास्टर था। ये कब की बात है? जब मैंने पश्चाताप लिखा था वहीं उसी स्कूल में बैठे बैठे मैंने पश्चाताप लिखा था, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब की बात है। अब वे आए चांदमल जी, बहुत गुस्से वाले भ्रमचारी थे, आपने ऐसे गुस्से वाले देखे नहीं होंगे अभी तक। नाम सुना आपने? ये उदयपुर में जितना भी 13 पंथ का प्रचार है उस एरिया में, वो उनकी वजह से ओनली वन मैन, कौन? ब्रह्मचारी चांदमल जी। तो वे आए मेरे यहां कि हम विद्यार्थियों की परीक्षा लेंगे, आप क्या पढ़ाते हैं? तो उन्हें बोला, तो उन्होंने कहा जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलो एक प्रकार का। तुम बोल बताओ कि दो प्रकार का, कि तुम बताओ कि तीन प्रकार का, कि तुम बताओ कि चार। क्या है पंडित जी? नहीं पूछो ना, पूछो जाओ ना, पूरा कर लो ना। 5 प्रकार का, 6 प्रकार का, 7 प्रकार का, 14 प्रकार का, 19 प्रकार का, 80 प्रकार का, संख्यात प्रकार का। अरे क्या क्यों, ये पागल क्या कह रहे हैं ये लड़के, ये क्या पढ़ाते हो आप? मैंने कहा निर्द्र संग्रह पढ़ाई है, उसमें जीव समाज के भेद है ना, उसमें लिखा है, गोमर सार में भी लिखा है, सब जगह लिखा है कि अपेक्षा से एक प्रकार का ही जीव है, तृष्ण स्थावर के भेद से 2 प्रकार के जीव हैं, एक इंद्रिय और विकलत्र और पंचेंद्रीय के भेद से 3 प्रकार के हैं, फिर 4 गतियों के हिसाब से 4 प्रकार के हैं, फिर 5 इंद्रियों के हिसाब से 5 प्रकार के हैं। मैंने पूछा है सबसे, सत्कार के जीवों के हिसाब से 6 प्रकार के हैं, ये सब बताएंगे? ऐसा पढ़ाया है आपने? हाँ। अब मुझे कितने का पुरस्कार मिला होगा ये मैं पूछूं? तो मैं 17 वर्ष का था, मैं नहीं करा, मैं वहां जाके जो मैं पढ़ता था मैं सब जगह जाके पढ़ा था। फिर मैं अशोकनगर में आ गया तो मुझे मेरी बराबर की उम्र के ही मेरे विद्यार्थी थे, उनके भी नाम बता सकता हूं। मैंने उन्हें लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई, मैंने न्याय जीविका पढ़ाई, परीक्षा में पढ़ाई, वे कुछ नहीं समझते थे, फिर बिल्कुल अजीरा थे। लोग कहते इन्हें क्या पढ़ा रहे? मैं कहा मैं किसे पढ़ाऊं, मुझे तो जो मिलेंगे उन्हें पढ़ाऊंगा, मैंने ये पढ़ा है ना। इसलिए मैं कहता हूं सबको, शांति को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूं कि जिनको आत्मख्याति पढ़ने पढ़ाने का मौका मिलता है, जिन्हें ये उच्च कोटि के ग्रंथ पढ़ाने का मौका नहीं मिला उन जैसा अभागा कोई नहीं, और जिन्हें ये मौका मिल गया उन जैसा कोई भाग्य नहीं। भगवान नहीं है, जय जयनाथ परम गुरु होने से कुछ नहीं चलने वाला है सभी। ये मूल बात तो देखो, मारो न मारो जीव को हो
बसाने से ये बंद का संचेत, तुम्हें जान लो परमार्थ से।
जी मरे चाहे न मरे, तुम मारो चाहे न मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहते हैं, अद्वसान भावों से बंद होगा। वो जो मैंने 1% आपको बता दिया है वो तो रूंगन का है भाई साहब। जो मैंने आपको प्रकृतियां गिनाई है ना, वो एक एक प्रकृति इतनी वजनदार है कि एक प्रकृति नहीं बंद है और बाकी 147 बने तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। समझ में आई ना आपकी, इतनी इतनी वजनदार है एक एक प्रकृति, और ऐसी वो इतनी प्रकृतियां हैं, और तीर्थंकर की प्रकृति और आहार एक दो बनना शुरू हो जाती है। आप ये मत समझो कि 41 नहीं बनती, इतनी नहीं बनती, इतनी ऐसा गिनती मत लगाना। ये समझ तो कि अनंत में अनंतवा भाग बधता है और अनंत गुणा नहीं बनता, ऐसा समझ लो। इतनी बड़ी कीमत है उसकी। क्या 1 करोड़ में 1 रुपए का नुकसान और 1 करोड़ का फायदा, ऐसी बात है कि 1 करोड़ के नुकसान से बच गए ऐसा फायदा। 1 करोड़ मिल गए नहीं क्या, 1 करोड़ के नुकसान से बच गए क्या। जब ऐसा केस चला था कि जिसमें फांसी की सजा की संभावना थी, नहीं तो आजीवन कारावास तो पक्का था, लेकिन मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई, अपराधी घोषित किया और कहा सजा परसों सुनाई जाएगी। कैसे उर्द मूंग चले होंगे, और तब तक एक कस्टडी में रहेंगे कौन, जिनके विरुद्ध सजा सुनानी है। क्या हुआ होगा 48 घंटे में, कितने ग्राम वजन कम हुआ होगा, कितनी मिठाई खाई होगी, क्या भाई साहब। और जब सजा सुनाई तो कहा कि इसे अपराध किया है, बस इसे कोई दूर से थे, इनकी अनुमोदना थी, इतना सिद्ध हुआ है, इसलिए उन्हें अदालत उठने तक की सजा दी जाती है। क्या ये सजा कितने बजे सुनाई, 5 बजे। अदालत कितने बजे उठती है, 5 बजे। तो जज साहब उठे, जज साहब फैसला सुना के तोड़ी कलम और उठ के चले गए, अब तुम भी जा सकते हो। बोलो, समझे ना, ऐसी है। क्या बंद नहीं हुआ वो ऐसा है, वो बंद हुआ वो ऐसा है, उसको बंद कहें। ये तो गोमट सार कह रहा है, हम क्या करें, हमारा समय सार तो कहता है बंद होता ही नहीं। ये झगड़ा है हमारा अन्ना जी का, जो निबटता ही नहीं है कभी। क्या कहते होता है, हम कहते नहीं होता है, होता है नहीं होता है। अब आपकी अदालत में मैं कहता हूं कि होता है कि नहीं होता है, पूरा पूरा समय सार में आने है। समय दृष्टि के बंद होता ही नहीं, समय दृष्टि के बंद होता ही नहीं, समय लिखा कि नहीं लिखा है। हम बता दें कर्मानियों के हिसाब से फलाने गुणस्थान में इतनी प्रकृतियां, फलाने गुणस्थान में इतनी प्रकृतियां, फलाने गुणस्थान में अपनी अपने गुणस्थान अपने पास रखो, तुम्हारे गुणस्थान की बताए हम तुम्हारे लेना। ये तो बंद अधिकार है, मोक्ष अधिकार सुनना है, क्यों सुनना है मोक्ष अधिकार, निकालो शांति जी फटाफट। क्या लिखा है कि बंध के चिंतन से मोक्ष होने वाला नहीं है। और क्या लिखा आगे तो सुनो कि ऐसे कौन सा बंध है, वो कौन सा धर्म ध्यान, विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से अंधी हुई है बुद्धि जिनकी। क्या लिखा सुनो राजेंद्र, विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से अंधी हुई है बुद्धि जिनकी, ऐसे अज्ञानियों को समझाने के लिए ये लिखते हैं। 118 पेज पे तो आप पढ़ के सुनो, समय सार में भी निकाल दो भैया, संस्कृत में पढ़ के सुना दूंगा इनको मैं, क्योंकि नहीं तो ये मानेंगे नहीं। देखो इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया 118 पेज, क्यों चाहिए ना। अन्य अनेक लोग ऐसा कहते हैं कि बंद संबंधी विचार श्रृंखला ही मोक्ष का कारण है। सोचो बंद के बारे में, कहो कौन पीतियां कितनी बंद होती, कहां बंद होती, कैसे बंद होती। किंतु यह भी ठीक नहीं है, कर्म से बंधे हुए जीवों को बंद संबंधी विचार श्रृंखला भी मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बेड़ी आदि से बंधे हुए पुरुष को उस बंधन संबंधी विचार श्रृंखला बंध से छूटने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्म बंध से बंधे हुए पुरुष को कर्म बंध संबंधी विचार श्रृंखला कर्म बंध से मुक्ति का कारण नहीं है। यहां इस कथन से कर्म संबंधी विचार श्रृंखला रूप विशुद्ध शुभ भाव रूप धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध है उन्हें समझाया है। कोई ऊपर ही जो मैं पढ़ रहा हूं देखो, है ना, अब लाओ संस्कृत लाओ। तुम्हारा कोई पंडित हुकुम जैन लिखी है और संबंध हुकुमजन ने बोला था तो मेरे को जाने के पहले मेरी पिटाई मिटाई कर दो, क्या पता। देखो एतेन कर्म बंध विषय चिंता प्रबंधात्मक विशुद्ध धर्म ध्यानांध बुद्धयो बोध्यन्ते। संस्कृत जानते हो समझ गया कि धर्म ध्यान से अंधी है बुद्धि जिनकी, उनको समझाते हैं। वे तो बंद मानते ही नहीं उसे, तुम गिनाते रहो प्रकृतियां कितनी है? ये तो अभी केवली को भी नहीं छोड़ेंगे, ये तो कहेंगे केवली को फोन करना नहीं होगा, घबराना नहीं कि उनको भी इतनी प्रकृतियां का बंद होता है, जब भले ही उसमें आश्रम होता है उसे भी कहते हैं भले ही स्थिति बंद नहीं होता हो, अनुभाग बंद नहीं होता हो, क्यों है? वो तो वहां तक भी गए, वो तो होता है। और सबसे ज्यादा मन वचन का चंचल होते हैं किनके, अरंध भगवान के, इसलिए कर्मों के प्रदेश सबसे ज्यादा आते हैं। अब प्रकृतियों के बंटवारा का नंबर आता है इतने में भाई साहब चले जाते हैं, कोई वेलकम करने वाला नहीं है, उनमें स्थिति नहीं पड़ती है, उनमें अनुभाग नहीं पड़ता है, हैं? तो ये तो तब तक भी कहेंगे होता है होता है होता है होता है, वो भी एक अपेक्षा है। ऐसा मतलब मैं विरोधी नहीं हूं उसका, ऐसा मत समझना। यदि हम विरोधी होते तो हमने एक साथ कैसे रहते, रोज सुबह एक साथ घूमने जाते हैं, एक साथ बिल्कुल 24 घंटे एक साथ रहते हैं। हम तो उन शतरंज जैसे खिलाड़ी हैं क्या कि खेल के समय एक दूसरे के पक्के शत्रु, सय और मात किसी कीमत पर माफ नहीं कर सकते, है ना। वो 1000 रुपए की घूस बता के क्या बचता है, पहले अपना वजीर बचा, क्यों किसी कीमत पर खेल में माफ नहीं करे, और सामने वाले को कोई यदि उंगली उठाए तो हम उसकी उंगली तोड़ दें। जीवन में ऐसे दोस्त, समझ में आया ना, जीवन में ऐसे दोस्त और खेल के समय में ऐसे पक्के, क्यों समझ में आया ना। कि रंज मात्र कोई बात नहीं है, अभी उनकी जब गुणस्थान की क्लास चलेगी तो वे कहें देख लो लिखा है गुणस्थान में इतना होता, मैंने भी अपने घर से थोड़ी लाया, तो मैं लाया हूं अपने घर से। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिनवाणी में विभिन्न अपेक्षाएं हैं उनको हमें गहराई से समझना चाहिए, और जो वस्तु का स्वरूप है हैं, उसको गहराई से समझकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। देखो कहां निकालो भैया अपना उतना पेज है, फिर वो सुबह पेज निकालो ना जो मैं पढ़ा रहा था 118 नहीं, अरे वो 11 अपना 11। यहां आचार्य देव अति संक्षेप में यह कहना चाहते हैं कि बंध का संक्षिप्त सी कहानी मात्र इतनी है, बस खत्म, लंबी लंबी बातें हमें नहीं करनी है। कि यदि तेरे हृदय में आत्मा में अद्यवसान भाव उत्पन्न हो गए, मैं परजीवों को मार सकता हूं, बचा सकता हूं, सुखी दुख कर सकता हूं, ऐसी मन मान्यता पूर्वक मानने बताने और सुखी दुखी करने का भाव हो गए मन अद्वसान हो गए मन ये है अद्वसान का अर्थ क्या मान्यता पूर्वक तो फिर तुझे बंध होगा ही क्योंकि तेरे बंध का संबंध तेरे अद्वसान भावों से ही है अन्य जीवों के मरने जीने और सुखी होने से नहीं अब सामने वाले क्या अपराध है उसे राग द्वेष क्यों करें रंज मात्र भी हमारा भला सुख दुख से कोई स्त्री का पति का पत्नी से पत्नी का पति से क्यों ऐसा निकट्टू पति मिला तो पति की गड़बड़ नहीं है कि तेरे भाग्य की गड़बड़ है क्या बोलो किसकी गड़बड़ है पति की गड़बड़ है? और ऐसी कलहकारी नारी मिली कि सुबह से एक सेकंड चैन नहीं लेने दे तो एक नारी की गलती है कि तेरे भाग्य की गलती है बोल उसने कुछ नहीं किया है समझे ना ये सब कोई नहीं किसी का पड़ोसी ने इसका कोई भी राग देश का पात्र है ही नहीं आप समझ ये तत्व आपकी समझ में आ जाएगा निर्मल जी तो क्या जीवन में परिवर्तन आएगा आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे विरुद्ध जिन लोगों ने छह छह किताबें 64-64 पेज की निकाली वो घर घर में मैं पहुंचाई मैं समय सार की साक्षी पूर्वक कहता हूं मेरे हृदय में उनके प्रति भी देश भाव नहीं आया मैंने कहा वो कोई जवाब नहीं देना बहुत लोगों ने मेरे विद्यार्थी तो उबल गए इनने कहा हम ऐसा कर देंगे यहीं बैठे हैं खैर में अजय करेंगे ये करेंगे तो मैंने कहा मजे नहीं अब मैं तो उनसे बोलता हूं प्रेम से मिलते हैं तो बहुत अच्छा मैं उनको चाय पानी भी पिलाता हूं कॉफी पीते हैं तो कॉफी पिलाता हूं नहीं हुआ सचमुच मुझे आश्चर्य है कि ऐसी परिणति वाले के प्रति मुझे कितना गुस्सा आना चाहिए अभी आपको पता नहीं है पहले का हुक्मचंद उसका गुस्सा आपने देखा नहीं है समझे ना जो पुराने मेरे हैं उनसे पूछो जाकर के तो उन्हें पता पड़ेगा तुम्हें और मैं सचमुच मुझे खुद ही आश्चर्य है दूसरे ने मैं कई दफे कह चुका हूं साक्षी पूर्वक ये क्यों नहीं आता है मेरे क्यों नहीं आता है आना चाहिए थोड़ा तो आना चाहिए क्या गुरुदेव का वो याद है भूलेला भगवान छे क्या क्या है? है एक ने नहीं मानी क्योंकि उसके बाद भी मैं सारे देश में घूमा मैं 365 गांवों में घूमा भाई साहब सारी जिंदगी में नहीं घूमा हुआ इतना ये देखने के लिए कि इसका क्या असर पड़ा है लोगों में तो लोगों का इतना वात्सल्य भाव मिला कि इससे मालूम पड़ा कि उनको कुछ नहीं उस किताब में ये लिखा था परमात्म कि जो इस बात के लिए अनुमोदना करेगा माने विरोध नहीं करेगा मेरा तो वो इसका समर्थ इस महापाप का समर्थक माना जाएगा तो मैंने जयपुर में कहा उनकी उपस्थिति में कि तुमने लिखा था ना हर पेज पे अभी किसी ने विरोध नहीं किया इसका मतलब ये है क्या कि इतने बड़ी सजा के बाद भी कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है क्यों विकल्प करते हो क्यों विकल्प करते हो क्या है सचमुच कोई किसी का कारण है ही नहीं तो क्या हुआ अभी कोई पूरब कर्म का उदय आया होगा थोड़ा सा संस्कृति का तो मेरे से लोगों ने कहा मेरे बच्चों ने पत्नी ने भी मैंने कहा इतनी प्रशंसा होती है तो तुम कुछ नहीं कहते हो तो थोड़ी वो भी होने दो उसमें क्या है अरे गुरुदेव बराबर तो नहीं हुई क्या गुरुदेव की विरोध में 8-10 अखबार रोजाना हर सप्ताह में खचाखच भरे रहते थे क्या बिगाड़ लिया किसी ने उनका क्यों इनने तो मुझे गुरुदेव के नजदीक पहुंचाया है मैं अंतिम बात करके समाप्त करता हूं जब मैं 63 में वहां गया था ना दादा तुम्हारे मैनपुरी परिसर में तो जब मैं अशोक नगर से बस में शिवपुरी तक गया तो लोगों ने बहुत मना किया कि आप बस से मत जाओ रास्ते में डाकू बहुत हैं फिर डाकू आपको पकड़ ले जाएंगे आप मत जाओ मैं कहा मैं तो जाऊंगा जब भारत हिंदुस्तान का लड़ाई चल रही थी वो लाल बहादुर शास्त्री और उसकी सबकी घटना है जाऊंगा मैं आगे पकड़ ले जाएंगे तो क्या मैं उन्हें सुनाऊंगा सरकारी जो भगवान मैंने इसे क्या ले जाऊंगा और मैं आज तक आपको कह रहा हूं तब भी कहा था कि मैं तो ऐसा आभागा हूं कि किसी डाकू के हस्ताक्षर मैंने आज तक देखे ही नहीं, देखने का मौका ही नहीं मिला। आतंकवादी के, डाकू के, गुंडे के, बदमाश के, ये तो सौभाग्य आप सेठिया लोगों का है। क्यों? क्योंकि जो उन्हें चाहिए वो आपके पास है, हमारे पास है ही नहीं। क्यों? क्या बात है, बोलिए। क्यों क्यों होगा? आएगा हमारा कोई थोड़ा बहुत, कोई बीच में आ जाएगा पाप का उदय, तो आ गया था रामचंद्र जी का भी, आ गया था बड़ों बड़ों का भी, आ गया था, आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा स्पष्ट शब्दों में कि मैं उन्हें भी उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव समझाऊंगा, तो क्या होगा? कुछ नहीं आएगा। कोई किसी का कुछ भला बुरा नहीं करता भैया, ये सेंट पर केंद्र सच्ची बात है, इसमें रंज मात भी फर्क नहीं है, अनंत भगवान की बात है। सौ इंद्रों की उपस्थिति में, गणधर देव की उपस्थिति में भगवान महावीर ने समोसन में बैठकर ये बात कही थी, ये बिल्कुल प्योर वही बात है।